क्षितिज एक सार्थक यात्रा नए क्षितिज की ओर, जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।
आप सभी श्रोताओं को नमस्कार। क्षितिज कार्यक्रम में मैं डॉक्टर देवव्रत सिरतन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को याद दिला देता हूं कि क्षितिज कार्यक्रम विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत किया जाता है। हर बार एक नया विषय लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित होते हैं और आज का विषय है मॉरिशस में नवोदित हिंदी लेखक, चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ। और इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारी मध्य में श्री विश्वानंद पत्या जी उपस्थित हुए हैं। श्री विश्वानंद पत्या जी के बारे में दो शब्द। श्री विश्वानंद पत्या जी महात्मा गांधी संस्थान में प्राध्यापक हैं और संस्कृत विभाग अध्यक्ष भी हैं। आपने हिंदी में बीए एमए और संस्कृत में बीए एमए किया है। आपकी रचनाएं महात्मा गांधी संस्थान की बसंत, रिमझिम एवं विश्व हिंदी साहित्य नामक पत्रिकाओं में प्रकाशित है। इसके अलावा आप हिंदी और संस्कृत के प्रचार में लगे हुए हैं। श्री विश्वानंद पत्या जी, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सिरतन जी।
कृपया हमारे श्रोताओं को बताइए कि नवोदित हिंदी लेखक से आपका क्या तात्पर्य है।
देखिए, नवोदित शब्द जो है नव और उदित से निर्मित शब्द हैं। नव का अर्थ है नया और उदित का अर्थ है जिसका उदय हुआ हो। इस प्रकार जब हम मॉरिशस के नवोदित हिंदी लेखक के बारे में चर्चा करते हैं, तब मॉरिशस के नए उभरते हिंदी लेखकों व लेखिकाओं पर दृष्टिपात करते हैं। अब नवोदित लेखकों की श्रेणी में मूलतः माध्यमिक, विश्वविद्यालय स्तर के छात्र तथा वयस्क लोग भी आ जाते हैं।
अर्थात ये वे लेखक हैं या कवि हैं जो कुछ लिखने का प्रयास करते हैं और एक तरह से वे उभरते हुए लेखक हैं।
एकदम सही।
आज के विषय के अनुसार नवोदित लेखकों के सामने चुनौतियां एवं संभावनाएं हैं। कृपया उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं उन पर कुछ प्रकाश डालिए।
सर्वप्रथम चुनौती के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहली चुनौती है समय का अभाव, अर्थात समय अभाव। आजकल कई हिंदी प्रेमी सृजनात्मक लेखन कार्य की अपेक्षा अपनी नौकरी पर अधिक ध्यान देते हैं। जीवन निर्वाह के लिए धन की बहुत आवश्यकता होती है और अधिकाधिक समय दफ्तर के कार्यों या प्रशासनिक कार्यों में बीत जाता है। समय के अभाव के कारण कई उभरते लेखकों की लेखन यात्रा जो है उसमें अवरोध उत्पन्न होने लगता है।
अच्छा,
तो मूलतः जब समय का इस प्रकार से अभाव हो जाता है तो ये जो नए उभरते लेखक हैं इनको उतना अवसर नहीं मिलता लिखने के लिए, तो ये पहली चुनौती है। दूसरी चुनौती की ओर अगर हम ध्यान दें तो हम देखते हैं कि मॉरिशस के बहुत से हिंदी प्रेमी लिखना तो आरंभ कर देते हैं परंतु उनको सही मार्गदर्शन या दिशा निर्देश नहीं प्राप्त हो पाता, मौका नहीं मिलता और वे रुक जाते हैं। उनकी जो लेखन की यात्रा है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है
जी।
इसके अलावा जब नवोदित हिंदी लेखकों की कृतियां प्रकाशित नहीं होती या प्रकाशन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, तब वे हतोत्साहित होकर लेखन कार्य से मुंह मोड़ लेते हैं। तो ये भी एक समस्या, एक चुनौती है। जिन लेखकों का कार्य प्रकाशित हो जाता है वे तो अधिक लिखने के लिए प्रेरित हो जाते हैं, परंतु जिनका कार्य अच्छा नहीं होता या फिर उनका प्रकाशन नहीं होता तब उन्हें निराशा होती है। और जब उन सृजनात्मक कार्यों के प्रकाशन में बहुत समय भी लग जाता है तब भी उभरते लेखकों के मन में उदासीनता आ जाती है
जी।
और इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि नवोदित हिंदी लेखक लिखना तो चाहते हैं परंतु जब उन्हें इस तथ्य का बोध होता है कि मॉरिशस में हिंदी पढ़ने वालों की संख्या अब अपेक्षाकृत कम होती चली जा रही है, तब उनकी कलम की गति जो है उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है और यह अत्यंत स्वाभाविक भी है। अब हम यह भी देखते हैं, आधुनिक युग में सृजनात्मक लेखन के लिए उचित वातावरण न होने के कारण भी मॉरिशस के कई नवोदित लेखक निराश हो जाते हैं। लेखन कार्य को एक अलग रूप प्रदान करने में सही व प्रेरणादायक वातावरण का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसलिए वातावरण पर काम करना चाहिए। तो मॉरिशस में ऐसे ही वातावरण का अभाव है, इसीलिए हम देखते हैं कि जो नए उभरते लेखक हैं उन्हें बहुत सारी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है।
यानी कि ये नवोदित लेखक ढांचे के अभाव में भी अपनी रचनाएं लिखने का प्रयास करते हैं।
हाँ, लिखने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब चुनौतियां सामने आ जाती हैं तो
थोड़ा सा रुक जाते हैं, रुकावट पैदा हो जाती है। इन लेखकों का भविष्य क्या है, उनके सामने कौन सी संभावनाएं हैं जिनका लाभ वे उठा पाएंगे?
हाँ, प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं यह कह सकता हूँ कि जैसे आपने कहा प्रेरणा के बारे में, तो मॉरिशस में कई ऐसे प्रसिद्ध लेखक साहित्यकार हैं और इन हिंदी साहित्यकारों का नाम देश विदेश में भी बहुत है, इन्होंने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की है। उदाहरण के रूप में अभिमन्यु अनज जी हैं और उनको मॉरिशस के कथा साहित्य का सम्राट माना जाता है, और लाल पसीना उनकी एक बहुत ही लोकप्रिय कृति है, इससे तो आप सहमत ही होंगे। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी हैं और साथ ही साथ ऐसी भी कृतियां हैं जो अमर हो गई हैं, उस पर जो छात्रगण हैं भारत के छात्र उस पर डिसर्टेशन कर रहे हैं, खोज कार्य कर रहे हैं, शोध प्रबंध लिख रहे हैं।
और इसके अलावा उन पर खोज कार्य,
हाँ आपने भी तो बहुत बढ़िया
जी। हाँ,
और इसके अलावा भी हम देखते हैं कि जो हिंदी के बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक हैं मॉरिशस के, वे हैं श्री रामदेव धुरेंद्र जी। उनकी छोटी मछली बड़ी मछली नामक कृति, वो तो पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। और इसके अलावा डॉक्टर हेमराज सुंदर जी, उनकी लघु ज्वालामुखी नामक संग्रह, और वो भी बहुत ही प्रसिद्ध हुई। अब आगे देखते हैं डॉक्टर मुनीश्वरलाल चिंतामणि जी की कविताएं भी। ये बात मैं बता दूं आप लोगों को कि यहाँ पर MGI में महात्मा गांधी संस्थान में हिंदी पाठ्यक्रमों में उनकी कविताएं संलग्न हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत ही रुचि के साथ। इसके साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि नवोदित लेखक किस प्रकार से इन कृतियों को पढ़कर वे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें सही दिशा भी प्राप्त हो सकती है।
श्री विश्वानंद जी, लेखक भले ही किसी साहित्यकार से प्रेरित होते हैं पर वे किसी न किसी रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाने का प्रयास करते हैं, इस पर कुछ हमें बताइए।
हाँ, पहचान तो बनती है। देखिए, हर साल विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा हिंदी साहित्य की विधाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन होता है और उसमें भाग लेकर तथा प्रथम द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करके नवोदित लेखक लेखिकाएं अपनी अलग पहचान बना लेती हैं। आपको पता है जब कोई भी प्रतियोगिता में भाग लेता है और उसको प्रथम स्थान प्राप्त हो जाता है तो उसका नाम एकदम चारों ओर रोशन हो जाता है, और सिर्फ अपना नाम, उसका नाम नहीं, उसकी पहचान नहीं, बल्कि उसके परिवार का नाम भी
बिल्कुल
रोशन हो जाता है। तो इसके साथ ही मैं यह भी कहूँगा कि लेखन संबंधी अन्य प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी पहचान ये लोग बना सकते हैं। इस कार्य में महात्मा गांधी संस्थान का के हिंदी विभाग का भी बहुत बड़ा योगदान है, और समय समय पर प्रतियोगिताओं का आयोजन वहाँ पर भी होता रहता है और इससे वहाँ के छात्रगण लाभान्वित होते हैं, उसमें भाग लेते हैं और अपनी पहचान भी इस प्रकार से बना लेते हैं।
नवोदित लेखक हो या कोई भी लेखक हो, उनका ध्यान सृजनात्मक लेखन पर केंद्रित रहता है, इस कौशल का विकास कैसे होता है?
हाँ, ये तो बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न। तो सृजनात्मक लेखन कौशल का विकास कैसे संभव हो सकता है? तो विद्वानों का यह कथन है कि अनभ्यासे विषम विद्या, यह संस्कृत की एक उक्ति है और इसका अर्थ है कि बिना अभ्यास के विद्या विष के समान बन जाती है। और आप इस बात से सहमत होंगे कि यदि नवोदित लेखक अभ्यास न करें, लिखने का बार बार अभ्यास न करें, तो वे कहीं ना कहीं थम जाएंगे, रुक जाएंगे और भविष्य उनका उतना उज्ज्वल नहीं होगा, हतोत्साहित हो जाएंगे। तो नवोदित लेखकों के लिए भी यही सीख है कि उन्हें हमेशा लिखने के लिए कुछ न कुछ करते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए। और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भी रातों रात प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार तो नहीं बन सके होंगे
जी।
और उनकी जीवनी पढ़ते समय इस बात की अनुभूति होती है कि उन्होंने लिखने का बहुत प्रयास किया होगा
जी।
कितना प्रयास ये सिर्फ कल्पना मात्र है, हम सोच सकते हैं उन्होंने रात दिन कितनी मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, तब जाकर उन्हें वह पदवी प्राप्त हुई उपन्यास सम्राट की। और नवोदित लेखकों के लिए तो अभ्यास अपेक्षित है, बहुत ही आवश्यक है, और निरंतर अभ्यास भी बहुत आवश्यक है। मतलब उन्हें सिर्फ एक दिन लिख कर दूसरे दिन रुक नहीं जाना है, लिखते रहना, लिखते तब इस प्रकार से उनकी शैली में भी एक परिवर्तन आएगा, लिखने की जो शैली है उसमें परिवर्तन आएगा, उसमें सुधार आएगा। और इसके अतिरिक्त हम मैं यह भी कहूँगा कि नवोदित लेखक यदि श्रेष्ठतम हिंदी दिग्गजों की रचनाओं को पढ़ें तो उन वहाँ से भी उन्हें प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। और यदि उन्हीं की शैली, उन महान साहित्यकारों की शैली के अनुरूप लिखने का प्रयास करें तथा आधुनिक समाज की मांग को ध्यान में रखकर हिंदी लिखने का प्रयत्न करें या रचनाओं को लिखने का प्रयत्न करें, कृतियों को लिखने का प्रयत्न करें, तो इस प्रकार से निस्संदेह एक सकारात्मक परिवर्तन होगा।
तो इससे पहले हम बात कर रहे थे दिशा के बारे में, मैं आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाहूँगा।
जी हाँ
विश्वानंद जी, मैं आपको याद दिला दूं कि साल 2019 में विश्व हिंदी सचिवालय की ओर से प्रोफेसर मिश्रा जी और डॉक्टर माधुरी जी की निगरानी में संगोष्ठी का आयोजन किया गया था,
मुझे अभी भी याद है,
जिसका संचालन प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर वेद रमन पांडे जी ने किया था। इसके अंतर्गत नवोदित लेखकों को दिशा निर्देश दी गई थी। आपके अनुसार ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन बार बार किया जाना चाहिए?
ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन बार बार किया जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन जब होता है तो इससे छात्रगण और पूरी जनता और हिंदी प्रेमी बहुत ही लाभान्वित होते हैं,
खासकर नवोदित लेखक,
और खासकर एक वो नवोदित लेखक जो है, और उन्हें प्रेरणा भी प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए, भारत से एक विद्वान आए और उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया, और उस दिन मुझे अभी भी याद है उन्होंने कहानी लिखने के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया था, और उन्होंने कहा कि एक रात में आप एक कहानी लिख कर आए और मैं देखता हूँ कि कौन लिख कर आएगा। तो उस दिन, उसके अगले ही दिन मैंने एक कहानी लिखी थी और मैंने वहाँ पर उन्हें संकेत भी किया, देखिए मैंने एक कहानी लिखी है। तो प्रेरणा के रूप में उन्होंने यह बात रखी और मैं उससे प्रेरित हो गया। तो अब अगर मैं प्रेरित हो गया तो सोचिए पूरी जनता कितनी प्रेरित होगी, हिंदी प्रेमी कितने उससे लाभ उठा पाएंगे। तो ये सब होना ही चाहिए और बहुत आवश्यक है, विशेषकर नवोदित लेखकों के लिए।
तो विश्वानंद जी, आपकी अपनी रचनाओं के बारे में दो शब्द बताएं।
मेरी रचना, मेरी पहली रचना, मैंने एक कविता लिखी थी, मेरी पहली रचना एक कविता है और उसका शीर्षक है जीवन के लक्ष्य को पहचानो। यह कविता जब मैं बीए प्रथम वर्ष में था, बीए हिंदी कर रहा था, तब मैंने एक कंपटीशन में, एक प्रतियोगिता में भाग लिया था और यह कविता मैंने लिखी थी, और सौभाग्यवश इस कविता के लिए मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
बधाई आपको,
बहुत बहुत धन्यवाद। और यही कविता जो है मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बनी।
तो आपके विचारों को हम बहुत पसंद करते हैं, मगर समय भी कुछ और बता रहा है।
हाँ।
तो प्रिय श्रोताओं, आज का हमारा क्षितिज कार्यक्रम समाप्त होने जा रहा है। थोड़ी देर पहले आप श्री विश्वानंद पटिया जी को सुन रहे थे। मैं डॉक्टर देवभरत रतन आप श्रोताओं और विशेष रूप से श्री विश्वानंद पटिया जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। ये कार्यक्रम आप तक पहुँचाने में श्री सुनील लक्ष्मण जी का सहयोग रहा। तो अगले कार्यक्रम तक हमें आगे दीजिए, नमस्कार,
बहुत बहुत धन्यवाद,
जिसमें आप सभी का हार्दिक स्वागत है।